बहुत समय पहले की बात है, धारा नाम की एक नगरी में एक राजा विक्रमादित्य राज्य किया करते थे। राजा विक्रमादित्य अपने समय के बड़े ही न्यायप्रिय, दयालु, साहसी और लोकप्रिय शासक थे। उनके सारे राज्य में शांति थी और प्रजा में संतोष। इस तरह धारा नगरी का राजपाट बड़े ही सुचारू तरीके से चल रहा था कि एक दिन राजा विक्रम के दरबार में शांतशील नाम का एक योगी पुरुष आया और उसने अपने झोले में से एक फल निकालकर राजा को भेंट स्वरूप दिया और एकदम निशब्द ठीक उसी तरह वापस भी चला गया जिस तरह वो आया था। फल की भेंट स्वीकार करते हुए राजा विक्रमादित्य ने सोचा,
बात कुछ समझ में नहीं आई। योगी महाराज आए, ये फल मुझे भेंट दिया और चुपचाप चले गए, ना कुछ पूछा ना कहा। चलो ठीक है, भेंट तो आखिर भेंट ही होती है, और राजा को भेंट में मिलने वाली सभी वस्तुएं राज्य की ही अमानत तो होती हैं। इस फल का संचय भी वहीं होना चाहिए। मंत्री, इस फल को राजकोष में जमा करवा दीजिए।
और फिर योगी के दरबार में आने तथा फल भेंट करने की बात आई गई हो गई। मगर एक दिन फिर वही योगी पुनः दरबार में उपस्थित हुआ और पहले की ही भांति चुपचाप उसी तरह का एक और फल राजा को भेंट कर वापस चला गया। असमंजस में पड़े राजा को यह उचित प्रतीत ना हुआ कि योगी से कुछ पूछा जाए। उस फल को भी पहले की ही तरह राजकोष में जमा करवा दिया गया। इसके बाद तो मानो ये एक सिलसिला ही चल निकला। हर दूसरे चौथे दिन वो योगी आता और एक फल राजा को भेंट करके चुपचाप चला जाता। एक दिन की बात है, राजा विक्रमादित्य जंगल में शिकार खेलने गए हुए थे। सारा दिन तो आखेट में व्यतीत हुआ और जब शाम ढलने को आई तो राजा ने वापस राजमहल जाने की सोची। जैसे ही राजा विक्रम चलने को हुए, उसी समय उनके सम्मुख वही योगी शांतशील आन खड़ा हुआ। सदा की भांति आज भी उसने एक फल राजा को भेंट स्वरूप दिया। राजा विक्रम उस भेंट को स्वीकार कर ही रहे थे कि अचानक उनके हाथ से फल नीचे धरती पर जा गिरा और उस फल के टुकड़े टुकड़े हो गए। और राजा विक्रम ने देखा कि उस फल में से चमकता दमकता एक बहुमूल्य रत्न बाहर निकल आया। राजा विक्रम तथा उनके दरबारियों की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। अब राजा से रहा नहीं गया, अतः उसने योगी से अत्यंत नम्र स्वर में पूछ ही लिया,
महाराज, ये क्या माया है? आपके दिए फल में ये बहुमूल्य रत्न हमारी कुछ समझ में नहीं आया।
तो इसका तात्पर्य यह कि तुमने अभी तक मेरी दी हुई भेंटों को ध्यान पूर्वक नहीं देखा।
वास्तव में योगीराज, हमने आपके दिए सभी फल राज्य की अमानत के रूप में अपने राजकोष में जमा करवा दिए थे और
फिर तो सभी फल सड़ चुके होंगे। राजन, जाओ और जाकर देखो, तुम्हें हर फल में इसी तरह का बहुमूल्य रत्न प्राप्त होगा।
परंतु योगीराज, हम इस सब का अर्थ नहीं समझ पाए। आपने हमें तो इतने उपहार दे डाले, परंतु बदले में हमसे कुछ भी नहीं मांगा।
वस्तुतः राजन, मैं अष्ट सिद्धि प्राप्त करने के लिए गोदावरी नदी के किनारे वाली शमशान भूमि में एक मंत्र सिद्ध करना चाहता हूं।
आप आज्ञा दें योगीराज, आपके इस पुण्य कार्य में हम किस तरह से सहायता कर सकते हैं।
राजन, तुम्हें एक रात बिल्कुल अकेले मेरे पास आना होगा यदि तुम वास्तव में मेरी सहायता करना चाहते हो तो।
हमें स्वीकार है योगीराज, आप बताइए हमें किस रात आपके पास आना होगा।
यदि तुम तैयार हो तो मंगल की रात भद्रपदी 14 को ही मंत्र सिद्ध किया जा सकता है।
ठीक है योगीराज, हम अवश्यमेव आपके पास निश्चित रात्रि को पहुंच जाएंगे, आप आश्वस्त रहें।
और इस तरह राजा विक्रम अपने कहे अनुसार नियत रात्रि को योगी राज के पास महाशमशान जा पहुंचे। वहां पहुंचकर राजा क्या देखते हैं कि योगी शांतशील अपने सामने धुनी रमाए समाधिस्थ बैठा है। उसके आसपास का वातावरण अद्भुत रूप से डरावना सा प्रतीत हो रहा था राजा विक्रम को। फिर भी साहसी राजा चुपचाप जाकर योगी राज के सामने जा खड़े हुए। कुछ ही पलों में योगी ने अपनी समाधि खोली। सामने राजा विक्रम को देखकर एक विशिष्ट मुद्रा में मुस्कुराते हुए बोले,
आओ राजन आओ, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम यहां अवश्य आओगे।
कहिए योगी राज, हमारे लिए क्या आज्ञा है?
ध्यान से सुनो राजन, यहां से दक्षिण दिशा में लगभग 2 कोस पर सोनपुर के घने जंगलों के बीच एक मरघट है। वहां एक पीपल के पेड़ पर एक शाख के सहारे एक शव लटक रहा है। जब तक मैं यहां पूजा कर रहा हूं, तुम जाओ और उस शव को मेरे पास ले आओ। कर सकोगे ये काम राजन?
अवश्य योगी राज, परंतु वो शव है किसका?
तुम जानना ही चाहते हो तो बताता हूं। वो शव बेताल का है, जो अपार शक्तियों का स्वामी है। यदि मैं अपनी तंत्र साधना से उसे अपने वश में कर लूं, तो फिर तुम्हारे राज्य में कभी किसी बात की कमी नहीं रहेगी।
अपने राज्य की भलाई के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा योगी राज, अब हम चलते हैं। ईश्वर ने चाहा तो शीघ्र ही हम अपने कार्य में सफल होकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे।
मुझे भी तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा रहेगी राजन, जाओ।
और राजा विक्रम उस सुनसान रात को कमर पर मात्र एक तलवार बांधे चल पड़े दक्षिण की ओर, पीपल के वृक्ष पर से शव को ले आने के लिए। रात अपनी पूरी कालिमा पर थी। हवा आंधी का रूप धरे मानो पूरी पृथ्वी को हिला देने का संकल्प किए अपने पूरे वेग से बह रही थी। जमीन पर से उठती धूल और सूखे पत्तों के कारण कुछ भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता था, मगर राजा विक्रम अपनी ही धुन में चले जा रहे थे। और फिर वही स्थान आ गया जहां राजा विक्रम को पहुंचना था। दक्षिण दिशा के घने जंगलों के बीचों बीच उजड़ा हुआ एक मरघट। वहां पहुंचकर राजा विक्रम ने क्या देखा कि सचमुच एक पीपल के पेड़ की एक शाख पर एक शव उल्टा लटका हुआ है। बस फिर क्या था, राजा विक्रम ने आव देखा न ताव, झट से पेड़ पर चढ़कर उस रस्सी को अपनी तलवार के एक ही वार से काट दिया जिसके सहारे वो शव लटक रहा था। एक ही झटके में वो शव जमीन पर जा गिरा। और तभी राजा विक्रम ने देखा कि जमीन पर गिरते ही वो शव दहाड़े मार मार कर रोने लगा। राजा के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, एक शव और वो रोना शुरू कर दे। राजा सोच में पड़ गया,
ये कैसा मायावी जाल है? यदि ये शव है तो ये रोना कैसा, और यदि ये रोता है तो अर्थ ये हुआ कि जीवित है, मगर फिर।
राजा विक्रम ने अपना सारा साहस इकट्ठा कर शव को संबोधन देते हुए उससे पूछा,
ये सब क्या है और तुम कौन हो?
ये सुनते ही शव खिलखिलाकर हंसने लगा और उड़कर फिर पेड़ की उसी शाख से जा लटका। राजा आश्चर्य में तो था ही, परंतु इतना भी नहीं कि वो अपना मूल उद्देश्य ही भूल जाए। उसने झट से फिर शव को पेड़ से उतारा और अपने कंधे पर डाल चल पड़ा वापस योगी राज की ओर। तभी शव में स्थित बेताल ने राजा विक्रम से पूछा,
तू कौन है और इस तरह मुझे कहां लिए जा रहा है?
हमारा नाम राजा विक्रमादित्य है और हम तुम्हें योगी शांतशील के पास लेकर जा रहे हैं।
ठीक है राजा विक्रम, मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है।
शर्त? कैसी शर्त?
तो सुन, मेरी शर्त ये है कि सारे सफर के दौरान तू कुछ नहीं बोलेगा, एकदम चुपचाप चलना होगा, और यदि तू रास्ते में कहीं भी एक शब्द बोला तो मैं वापिस चला जाऊंगा।
राजा विक्रम ने बेताल की बात मान ली और शव लिए चल पड़ा महाशमशान की ओर, जहां उसकी प्रतीक्षा में रत था योगी राज। अभी राजा विक्रम कुछ ही दूर पहुंचे थे कि बेताल बोला,
राजन रास्ता लंबा व कठिन है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम अवश्य थक जाओगे और इससे तुम्हें अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफलता नहीं मिलेगी। अतएव राजन, श्रम को बुलाने के लिए मैं तुम्हें एक अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ, सुनो। सैकड़ों साल पहले की बात है, मदनपुर नामक शहर में वीरबल नाम का एक राजा राज्य करता था। उसी नगर में एक सेज भी रहता था जिसका नाम था सोमदत्त। राजा वीरबल और सेज सोमदत्त में काफी गहरी चंती थी। उस शहर में राजा वीरबल ने प्रजा के हित के कुछ नियम बनाए हुए थे, जिनमें से एक नियम ये था कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पत्नी का पति नहीं हो सकता और ना ही किसी दूसरे की पत्नी को पत्नी बना सकता है। वो जो सेठ ताना राजन, वो अभी तक कुंवारा था और वास्तविक अर्थों में उसे अपनी जीवन संगिनी की तलाश थी। ऐसे में एक दिन उसी शहर में लगे मेले में सोमदत्त की मुलाकात हुई एक अत्यंत रूपवती कन्या से। उसे देखते ही सोमदत्त उस पर मोहित हो उठा।
आह, क्या रूप है, क्या लावण्य है, ऐसी सुंदरता तो ना कहीं देखी ना सुनी। कितना सौभाग्यशाली होऊंगा मैं यदि इस रूप यौवना को अपनी जीवन साथी बना सका तो।
तो राजन फिर क्या था, सेठ सोमदत्त ने अपने सभी गणों को आदेश दिया कि वो जल्द से जल्द पता लगाएं कि यह सुंदरी कौन है। दूतों ने खूब भाग दौड़ कर पूरी जानकारी हासिल की। उन्होंने सेठ को बताया,
स्वामी वो कन्या नगर व्यापारी हिरणचंद्र की बेटी है और उसका नाम है मदन मंजरी।
आह, जितनी सुंदर कन्या उतना ही मधुर नाम, मदन मंजरी। हाँ, हम अवश्य ही उस सौंदर्य बाला को अपनी पत्नी बनाएंगे। सुनो, जाओ तुम मदन मंजरी के पिताश्री के पास हमारे विवाह का प्रस्ताव ले जाओ, और हाँ बात विनम्रता से ही होनी चाहिए, समझे?
जो आज्ञा स्वामी।
नहीं नहीं, ये कैसे संभव हो सकता है, हम तो अपनी पुत्री मदन मंजरी का विवाह पहले से ही जयकरण नाम के एक युवक से तय कर चुके हैं। जाओ और जाकर अपने स्वामी से कह दो कि हम उनका ये विवाह का प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकते।
राजन ये बात सुनते ही सोमदत्त पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।
नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा दुर्भाग्य, कैसी विडंबना है ये, हमने जीवन में पहली बार किसी कन्या को अपने जीवन साथी के रूप में देखा। ओह, ये मैं क्या करूं अब, उसके बिना तो अब इस जीवन का अर्थ ही खो गया। नहीं, मैं उसके बिना नहीं रह सकता।
राजा विक्रम, जानते हो मदन मंजरी से विवाह ना हो पाने की स्थिति में सोमदत्त का दुख इतना बड़ा कि वो वैराग्य तक लेने की सोचने लगा। उड़ते उड़ते ये बात मदन मंजरी के कानों तक भी जा पहुंची। अतः उसने सोमदत्त को एक पत्र लिखा जिसमें उसने संवेदना व्यक्त करते हुए ये भी लिखा।
जो विवाह मेरे माता पिता ने अपनी इच्छा से तय किया है, यदि मैंने उसे तोड़ने का साहस किया तो एक कोहरा मच जाएगा जिसे मेरे माता पिता सहन नहीं कर पाएंगे। अतः मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हाँ, लेकिन मैं आपसे मिलना अवश्य चाहूंगी। शायद ये बात अब मेरे विवाह के पश्चात ही संभव हो सके।
तो राजन, जब सोमदत्त को ये पत्र प्राप्त हुआ तो वो मानो अपने सब दुखों को भूल गया और प्रतीक्षा करने लगा अपनी प्राण प्रिया के आगमन की। उधर निश्चित तिथि को मदन मंजरी का जयकरण से विवाह संपन्न हो गया। वो विदा होकर अपने ससुराल भी चली गई। मगर वहां पहुंचते ही उसने अपने पति से सब कुछ स्पष्ट रूप से कह दिया और सोमदत्त से मिलने की अनुमति भी मांगी, जो उसके पति ने सहर्ष दे डाली। राजन, उसी रात मदन मंजरी सोमदत्त से मिलने के लिए चल दी, एकदम अकेली। आधी रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। आभूषणों से लदी मदन मंजरी रात के अंधेरे में चुपचाप चली जा रही थी कि अचानक रास्ते में एक चोर ने उसे देख लिया। इतने गहनों को देख उससे रहा ना गया, अतः उसने आगे बढ़कर मदन मंजरी की राह रोक ली।
रुक जाओ, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो सब के सब आभूषण मेरे हवाले कर दो, वरना।
देखिए, इस समय आप मुझे ना रोके, मैं आपसे वादा करती हूँ कि वापस आते समय मैं स्वयं अपने सभी आभूषण आपको दे दूंगी। कृपा करके अभी मेरा रास्ता ना रोके।
देखो, मेरा नाम भी चोर रज्जीराम है, मुझे धोखा देने की कोशिश की तो परिणाम अच्छा ना होगा।
मैं वचन दे रही हूँ, कृपया विश्वास करें।
तुम अपने वचन को भूलोगी तो नहीं?
कदापि नहीं।
ठीक है, मैं यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, लेकिन जल्दी लौटना।
ठीक है।
और चोर ने उसका रास्ता छोड़ दिया, उसे जाने दिया। अब मदन मंजरी सीधे सोमदत्त के पास उसके घर पहुंच गई।
तुम यहाँ इस समय?
जी, मैंने पत्र में आपसे वादा किया था ना कि मैं अवश्य आपसे मिलूंगी, सो मैं आ गई।
मगर ये आभूषण, ये शादी का सा लाल पहनावा और ये।
मैंने आपसे यही कहा था कि मैं अपने विवाह के बाद ही आपसे मिलने आ सकती हूँ।
तो क्या तुम्हारा विवाह हो गया?
जी हाँ।
तो फिर यहाँ क्या लेने आई हो? क्या तुम्हें नगर के नियम का भी स्मरण नहीं? अब तुम जयकरण की पत्नी हो, यहाँ तुम्हारा अब कुछ स्थान शेष नहीं है। यदि राजा को मालूम हो गया तो वो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी फांसी पर चढ़ा देगा। नहीं नहीं मदन मंजरी, नहीं, तुम्हारा यहाँ आना सर्वथा अनुचित है। मुझ पर कृपा करो, जाओ जाओ यहाँ से, जाओ।
राजन, सोमदत्त की ऐसी बातें सुनकर मदन मंजरी बहुत निराश हो गई और वहां से चल दी। रास्ते में वो चोर रज्जी राम उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। मदन मंजरी ने उसे सब बात बताकर अपने सब आभूषण उतार कर उसके सामने रख दिए। लेकिन जानते हो राजा विक्रम, चोर ने क्या कहा? उसने सब आभूषण मदन मंजरी को वापस देते हुए कहा,
तुमने सच बोला और अपना वचन भी निभाया, तुम्हारे इस बात से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। जाओ, अपने सभी आभूषण ले जाओ, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है, जाओ।
मदन मंजरी वहां से चलकर सीधा अपने पति के पास पहुंची। क्योंकि देर काफी हो चुकी थी, अतः उसका पति जयकरण बहुत क्रोध में आ चला था। हालांकि मदन मंजरी ने अपने पति को सब बातें साफ साफ बता दी थी, फिर भी जयकरण ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस पर मदन मंजरी का दिल बिल्कुल टूट कर रह गया और इस आघात को सहन ना कर पाने की स्थिति में मदन मंजरी ने स्वयं फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो राजा विक्रम, ये थी मदन मंजरी और सोमदत्त सेठ की कहानी जो तुमने सुनी। अब तुम इसका न्याय करो।
न्याय कैसा बेताल? मदन मंजरी ने जैसा कर्म किया वैसा फल पाया।
लेकिन राजन, इसमें त्याग किसका बड़ा था? जयकरण का, मदन मंजरी का या फिर सोमदत्त का, जिसने जयकरण की पत्नी को जो उसकी प्रिया थी अपने घर से वापस लौटा दिया, अथवा उस चोर का जिसने गहनों की अदम्य इच्छा होते हुए भी उन्हें नहीं लिया? जल्दी बोल राजन, जल्दी बोल। यदि तू जानते हुए भी इसका ठीक ठीक न्याय नहीं करेगा तो तेरा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा।
सुनो बेताल, बिना स्वार्थ के किया गया त्याग ही सच्चा और सर्वश्रेष्ठ त्याग होता है। सोमदत्त ने चूंकि कानून के डर से मदन मंजरी को त्याग किया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उधर जयकरण ने अपनी पत्नी की चरित्रहीनता को देखकर उसका त्याग किया तो उसके त्याग का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता। अब जहां तक प्रश्न मदन मंजरी का है तो वह सभी से सच कहने के कारण सत्यवादी तो हुई परंतु त्यागी नहीं। अतः चोर का त्याग ही निस्वार्थ तथा श्रेष्ठ त्याग माना जाएगा।
वाह राजन, तू सचमुच बड़ा बुद्धिमान और न्यायी है। तेरा न्याय तो संसार में सदा अमर रहेगा। लेकिन मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यदि तू कुछ बोला तो मैं वापिस चला जाऊंगा। या तू बोला और ले ये मैं चला।
नहीं बेताल, तू हमसे बचकर नहीं जा सकता। हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे।
चला जा विक्रम, वापिस चला जा। जिस योगी ने तुझे मेरे पास भेजा है वो दुष्ट है, कपटी है, पाखंडी है। जिद मत कर, चला जा, वापिस चला जा।
और बेताल उड़कर पुनः उसी पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम ने फिर अपनी तलवार निकाल ली और बेताल को लाने के लिए चल पड़ा उसी ओर। हठी राजा विक्रम ने फिर शव को पेड़ की डाल से उतारा और कंधे पर डालकर चल पड़ा महाशमशान की ओर। तभी शव में स्थित बेताल बोल उठा।
तू वाकई बहुत हठी है राजन। ले, मैं फिर तेरे साथ हो लेता हूं, मगर याद है ना मेरी शर्त, तू रास्ते भर कदापि नहीं बोलेगा। इधर तू बोला और उधर मैं फिर से गायब हो गया। रात बहुत अंधेरी है विक्रम, और तेरा श्रम भी कठोर है। चल, मैं तेरे इस श्रम को भुलाने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ, सुन। एक समय की बात है, यमुना नदी के किनारे धर्मस्थल नामक एक नगर था। उस नगर में केशव नामक एक ब्राह्मण रहा करता था, और हाँ, उसकी एक अत्यंत गुणवती तथा रूपवती सुपुत्री भी थी। नाम था उसका मधुमालती। जब मधुमालती विवाह योग्य हुई तो उसके माता पिता तथा भाई को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। सभी उसके लिए योग्य वर की तलाश में जी जान से जुट गए। इसी तरह जब एक दिन मधुमालती का पिता अपने एक मित्र सुंदरलाल के घर गया तो वहां उसने एक अति सुंदर युवक को बैठे देखा। मधुमालती के पिता केशव को ऐसा लगा,
इस युवक में मेरी पुत्री के पति होने के सभी गुण प्रतीत होते हैं। हाँ, मुझे इस युवक के पिता के बारे में पता लगाना चाहिए तथा अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव उनके पास भेजना चाहिए।
केशव की पुत्री का विवाह प्रस्ताव पाकर उस युवक के पिता अत्यधिक प्रसन्न हुए।
धन्य है हम पंडित जी जिन पर आप जैसे महाज्ञानी सद्धर्मी व्यक्ति की नजर पड़ी। आपके साथ हम ये संबंध जोड़े ये तो हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है पंडित जी।
तो शास्त्री जी, क्या मैं ये रिश्ता तय मानूं?
अवश्य अवश्य पंडित जी, जल्दी से जल्दी शुभ मुहूर्त निकालिए। ऐसे कामों में आप तो जानते हैं देरी नहीं करनी चाहिए।
जी, प्रभु की लीला अपरंपार है मालती की माँ, हमारी बेटी तो बहुत भाग्यशाली निकली।
वो तो है ही, उसके भाग्य से तो भाग्य की देवी ईर्ष्या करेगी।
अरे, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैंने उसका रिश्ता तय कर दिया है?
क्या, आपने रिश्ता तय कर दिया है? नहीं नहीं, आपको कुछ गलत फहमी हो गई है स्वामी। अपनी मालती का रिश्ता तो मैंने तय किया है।
तुमने कहा?
अपनी वो पांडे जी की पत्नी है ना, वही आई थी यहाँ, खुद चलकर आई थी हमारी बेटी का रिश्ता अपने सुपुत्र वामन के लिए मांगने। मैंने तो हाँ कह दिया।
ये क्या किया मालती की माँ, मालती का संबंध तो मैं शास्त्री जी के बेटे से तय कर आ रहा हूँ। उनका लड़का बहुत योग्य है और सुंदर भी है।
ये तो समस्या आन पड़ी।
माँ, पिताजी, आपके लिए एक शुभ समाचार लाया हूँ।
शुभ समाचार?
हाँ माँ, आज मेरी भेंट एक अत्यंत गुणी और रूपवान युवक मधुसूदन से हो गई। बस मैंने क्षण भर में निर्णय करके उससे अपनी प्रिय बहन मधुमालती के साथ विवाह का प्रस्ताव दे दिया और वो भी क्षण भर में मान गया। क्यों पिताजी, है ना सुखद समाचार?
हाँ बेटे, है तो सुखद समाचार, परंतु अब समस्या ये आ खड़ी हुई कि इधर मैं भी मालती का विवाह कहीं तय कर कर आया हूँ और उधर तुम्हारी माँ भी किसी से बात पक्की कर आई है और फिर तुम भी।
ओह, ये तो एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई पिताजी।
तो ठीक है, हम इसका निर्णय मधुमालती के ऊपर छोड़ते हैं, वो चाहे जिसे अपना पति चुने।
तो ठीक है पिताजी, हम स्वयंवर की तैयारियां करते हैं।
अरे, ये तो तीनों युवक एक से बढ़कर एक है। समझ में नहीं आता किसके गले में वरमाला डालूं।
तो राजन, मधुमालती की मृत्यु हो गई, सब तरफ हाहाकार मच गया, विवाह उत्सव की धूमधाम शोक संतप्त होकर रो उठी। विवाह करने आए तीनों युवक भी विलाप करने लगे। फिर शीघ्र ही मधुमालती का दाह संस्कार भी कर दिया गया। होनी के आगे किसका बल चलता है विक्रम? उन तीनों युवकों में से पहले युवक विक्रम ने मधुमालती के फूल चुने और उन्हें अपने साथ जंगल में ले जाकर वहीं तपस्या करने लगा। दूसरे युवक वामन ने मधुमालती की भस्म को एकत्र किया और उसे एक स्वर्ण कलश में डाल दिया तथा वहां एक छोटी सी कुटिया बनाकर मधुमालती की याद में दिन रात आंसू बहाता रहने लगा। और जो तीसरा युवक था ना विक्रम, हाँ, वही मधुसूदन, जिसका चुनाव मधुमालती के भाई ने किया था, वो साधु वेश बना वन वन पर्वत पर्वत भटकने के लिए निकल पड़ा। मधुसूदन इसी तरह भटकते भटकते एक जंगल में पहुंचा। अभी उसे वहां पहुंचे कुछ ही देर हुई थी कि एक रोते हुए नारी स्वर ने उसके पैरों को अपनी ओर आकृष्ट किया। उसने देखा वहीं कुछ दूर आग का एक अलाव चल रहा है जिसमें एक बच्चा जलकर राख हो रहा है। पास ही में एक तांत्रिक क्रोधित मुद्रा में बड़बड़ा रहा है तथा एक स्त्री जो बच्चे की माँ तथा तांत्रिक की पत्नी थी ऊंचे ऊंचे स्वर में रो रही है, चिल्ला रही है।
आपने ऐसी कठोर सजा क्यों दी स्वामी? मेरा बच्चा आपने मार डाला। नहीं, आपको लौटा नहीं होगा मेरा बच्चा, लौटाइए मेरा बच्चा, मुझको मेरा बच्चा वापस दे दीजिए। मेरा बच्चा वापस दे दो, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी।
ये नारी चरित्र ठीक है, इस बार मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को क्षमा दान देता हूँ। लो आ गया तुम्हारा बाल इसमें, लो संभालो।
हाँ राजा विक्रम, सचमुच ही उस तांत्रिक ने आग में फेंके हुए बालक को अपनी तंत्र साधना के बल पर पुनर्जीवित कर दिया। तांत्रिक का ये अद्भुत चमत्कार देख मधुसूदन आश्चर्यचकित रह गया। उसने मन ही मन एक निश्चय किया।
कैसा विलक्षण चमत्कार है ये, आग में भस्म हो चुके शरीर को पुनः शरीर प्राप्त हो गया। वाह, यदि ऐसी ही तांत्रिक सिद्धि मुझे प्राप्त हो जाए तो अवश्य ही मैं अपनी मधु मालती को दोबारा जीवित कर सकूंगा। हाँ, लेकिन क्या ये तांत्रिक बाबा मुझे अपनी ये तंत्र विद्या सिखाएंगे? मालूम नहीं, चलो उन्हीं से पूछता हूं। प्रणाम बाबा।
आयुष्मान भव, कहो युवक कैसे आना हुआ?
बाबा मेरा नाम मधुसूदन है और क्या है कि अभी मैंने अभी आपकी एक तंत्र सिद्धि का चमत्कार देखा। मैं संकोच में तो हूं परंतु बिना कहे भी नहीं रह पा रहा।
कहो कहो, आखिर बात क्या है युवक?
बाबा क्या आप मुझे भी ये तंत्र विद्या सिखाएंगे? मैं भी इस तंत्र सिद्धि के बल पर मधु मालती को जीवित कर अपनी जीवन संगनी बनाऊंगा। बाबा क्या आप मुझ पर ये कृपा करेंगे?
कदापि नहीं, ये संभव नहीं है। ना समझ, तंत्र सिद्धि किसी कार्य उद्देश्य को ध्यान में रखकर अथवा स्वार्थ सिद्धि के लिए कभी नहीं की जाती। जा, चला जा यहां से।
परंतु बाबा।
सुना नहीं, जा चला जा यहां से, अन्यथा हमारे क्रोध के समक्ष तो बड़े बड़े पर्वत हिल जाया करते हैं। जा चला जा।
तो राजा, जब उस तांत्रिक ने मधुसूदन को अपनी विद्या देने से इनकार कर दिया तो मधुसूदन ने निराश होने की बजाय एक ऐसा निर्णय ले लिया जो ना तो उपयुक्त था और ना ही सरल। जानते हो कौन सा निर्णय? हाँ राजन, मधुसूदन ने चोरी करने का निर्णय किया। उस तंत्र विद्या की पुस्तक को जिसके बल पर तांत्रिक सिद्धियां अपने वश में की जा सकती थी। बस फिर क्या था, एक रात मधुसूदन ने वो पुस्तक चुरा ही ली और वहां से भाग खड़ा हुआ।
अब ये तंत्र की पुस्तक मेरे हाथ में है, अब मैं अवश्य अपनी मधुमालती को पुनर्जीवित कर सकूंगा और उससे विवाह कर सकूंगा। लेकिन मुझे इसके लिए मधुमालती की भस्म और उसकी हड्डियां भी तो चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये सब उन दोनों युवकों के पास होना चाहिए। हाँ, अब मुझे उन दोनों युवकों को तलाश करना होगा। मैं उन्हें जरूर तलाश करूंगा, फिर मधुमालती को अपनी जीवन संगनी बनाऊंगा।
तो राजा, मधुसूदन को वो दोनों युवक भी मिल गए। इस प्रकार तीनों ने एक जगह एकत्रित होकर अपने प्रयासों से मधुमालती को फिर से जीवित कर दिया। अब मधुमालती तो जीवित हो गई, परंतु उन तीनों के समक्ष एक समस्या ये उत्पन्न हो गई कि वास्तव में मधुमालती पर अधिकार किसका हो, अथवा वो इन तीनों युवकों में से किसकी पत्नी बने। वो तीनों ही मधुमालती पर अपना अधिकार जता रहे थे।
देखिए, मधुमालती की भस्म का संचय मेरे पास था, अतः जब तक भस्म उपलब्ध ना होती तब तक मधुमालती का देह प्राप्त करना असंभव था, इसलिए मैं ही मधुमालती का वास्तविक अधिकारी हूँ।
लेकिन श्रीमान, आप यह क्यों भूले जा रहे हैं कि मधुमालती की हड्डियां तो मैंने ही उपलब्ध कराई थी, अतः उस पर आपका नहीं मेरा अधिकार अपेक्षाकृत अधिक है।
लेकिन बंधुओं, आप ये सब भूल रहे हैं कि यदि मैं अपनी जान का जोखिम उठाकर उस तांत्रिक के यहाँ से ये तंत्र विद्या की पुस्तक ना चुराता तथा मधुमालती में उसी तंत्र विद्या के बल पर प्राण ना फूंकता तो उसका पुनर्जीवित होना असंभव था। अतः बंधुओं, मधुमालती वास्तव में यदि किसी की पत्नी बन सकती है तो केवल और केवल मेरी ही।
तो राजा विक्रम, इस तरह से ये प्रश्न कि मधुमालती पर वास्तविक अधिकार किस युवक का हुआ, पल प्रतिपल विकराल रूप धारण करता हुआ उन तीनों के सरों पर मंडराने लगा। राजा विक्रम, तुम तो बहुत बुद्धिमान और न्यायी हो, अब तो इसका फैसला भी तुम्ही को करना होगा कि मधुमालती उन तीनों युवकों विक्रम, वामन और मधुसूदन में से किसकी पत्नी हुई। राजा, यदि तुम जानते हुए भी न्यायिक निर्णय ना दोगे तो तुम्हारा सर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बताओ, जल्दी बताओ।
सुनो बेटा, मधुमालती पर वास्तविक अधिकार वामन का हुआ, जिसने उसकी भस्म संचित करके अपने पास रखी हुई थी।
वो कैसे राजन?
वो इस तरह से बेताल कि संसार में हर रिश्ते का एक आधार अवश्य होता है। मधुसूदन ने अपनी तंत्र सिद्धि के बल पर मधुमालती को नया जीवन दान तो दिया, लेकिन तुम जानते हो जीवन दान देने वाला तो पिता ही होता है, पति नहीं हो सकता। इसी तरह विक्रम नाम के युवक ने चूंकि मधुमालती के फूल चुने थे जिसका अधिकार केवल बेटे को ही होता है, इसलिए वो भी मधुमालती का पति होने का अधिकार खो चुका है। अब केवल वामन ही बचता है जिसने मधुमालती की राख अपने पास रखी हुई थी, जो इस संसार में सही मायनों में पति का ही अधिकार है। अतः पुनर्जीवित होने पर मधुमालती वामन की ही पत्नी हो सकती है और किसी की नहीं।
वाह राजा विक्रम, तेरी बुद्धि और तेरे न्याय के क्या कहने, तूने क्या खूब न्याय किया है। मगर इस न्याय के चक्कर में तुम भूल गए कि मैंने तुमसे पहले क्या कहा था, इधर तुम बोले उधर मैं चल दिया वापस उसी पेड़ पर।
रुक जाओ बेताल, रुक जाओ, हम भी तुम्हें इस तरह छोड़ने वाले नहीं, रुक जाओ,
चला जा,
रुक जाओ।
विक्रम वापस चला जा, जिस योगी ने तुझे मेरे पास भेजा है वो दुष्ट है, कपटी है, पाखंडी है, केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ही उसने तुझे अपने जाल में फांसा है, चला जा।
और बेताल उड़कर फिर उसी पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम ने फिर अपनी तलवार निकाल ली और बेताल को लाने चल पड़ा उसी ओर। राजा विक्रमादित्य साहसी तो थे ही, साथ ही कुछ हठी स्वभाव के भी थे, और फिर उन्हें अपना वचन भी तो निभाना था जो उन्होंने महाशमशान में योगी शांतशील को दिया था। उनके कंधों से उड़कर बार बार पेड़ पर जा लटकने वाले शव को पहुंचाना था योगी के पास, मगर इधर शव में स्थित बेताल भी कुछ कम नहीं था। पहले स्वयं ही राजा को चुप रहने की शर्त रखता, तत्पश्चात स्वयं ही उन्हें बोलने पर विवश कर उड़ जाता वही पीपल के पेड़ पर उल्टा लटकने के लिए। इस बार भी फिर वही हुआ। राजा विक्रम ने एक बार पुनः पेड़ से उल्टे लटक रहे शव को नीचे उतारा और पहले की ही भांति उसे अपने कंधे पर डाल हाथ में खुली तलवार लिए चल दिए महाशमशान की ओर।
हठी ही नहीं निर्दयी भी है, देख कैसे तूने मेरी गर्दन मरोड़ डाली है।
तो फिर बेताल तुम बार बार भागते क्यों हो,
तुम बीच में बोलते क्यों हो?
लेकिन तुम ही तो हमसे न्याय करने के लिए कहते हो और न्याय करना हमारा धर्म है।
तो फिर भागना मेरा धर्म है विक्रम। अब जबकि तूने मुझे पकड़ ही लिया है तो तेरे श्रम को भुलाने के लिए मैं तुझे एक और कहानी सुनाता हूँ, ले सुन। अवंती नाम के एक नगर में राजा विशाल दत्त राज्य करता था। उसके पास एक तोता था, हीरामन। एक दिन राजा ने तोते से कहा,
हीरामन तू तो देश विदेश की सैर करके आया है, मेरे लिए यदि कोई तुझे योग्य व सुशील राजकुमारी दिखाई दी हो तो बता, मैं अब विवाह करना चाहता हूँ।
महाराज, मगध देश के राजा की बेटी चंद्रवती बिल्कुल आपकी पत्नी होने योग्य है, रूपवती है, गुणवती है, आप जल्द से जल्द अपना विवाह संदेश उसके लिए भेजें।
उधर राजकुमारी चंद्रवती के पास भी एक मैना थी सोना नाम की। उस मैना ने भी राजकुमारी को बताया कि उसका भावी जीवन साथी राजा विशालदत्त है। इस तरह राजा विशालदत्त तथा राजकुमारी चंद्रवती का विवाह संपन्न हो गया। जब चंद्रवती राजा विशालदत्त के घर आई तो अपने साथ अपनी मैना सोना को भी लेती आई। राजा विशालदत्त ने सोना को अपने तोते हीरा मन के पिंजरे में ही डाल दिया। एक दिन की बात है, उस मैना ने तोते से कहा,
सुना है तुम तो दूर दूर के देशों में घूमे हो, तुमने तो इस दुनिया में अच्छा बुरा सब तरह का व्यवहार और दुनियादारी देखी होगी, तो क्यों नहीं आज तुम मुझे कोई अच्छी सी कहानी सुनाते।
अवश्य सोना, मुझे तो ना जाने कितनी कहानियाँ ज्ञात है, मैं तुम्हें एक क्या कई कहानियाँ सुना सकता हूँ।
लेकिन हीरामन, कहानी बिल्कुल सच्ची होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना। अच्छा,
हाँ हाँ, मैं तुम्हें सच्ची कहानी ही सुनाऊंगा, तुम सुनो तो सही।
हाँ हाँ, सुनाओ ना।
लो सुनो। एक बार मैं उड़ते उड़ते यहाँ से काफी दूर सोनपुरी नगरी में जा पहुंचा। इस नगर में एक सेठ रहता था, नाम था उसका गुणवंत। सेठ गुणवंत बहुत ही नेक, दयालु और धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था, मगर जो उसकी पत्नी थी ना, वो बहुत अच्छे चरित्र वाली नहीं थी। इसी तरह उसकी पुत्री भी, जिसका नाम रत्नावती था, ठीक अपनी माँ के पद चिन्हों पर ही चल रही थी। उनकी हालत देख सेठ सदा चिंतित रहता था।
कैसी विडंबना है ये, मुझ जैसे प्रभु कृपा पर आश्रित व्यक्ति के घर ये कैसी संतान ने जन्म लिया है। पहले तो पड़ोसी बातें बनाते थे, मगर अब तो सारे नगर में उनके नाम को ले लेकर उछाला जाना शुरू होने लगा है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, मुझे इस विषय में अवश्य कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन लेकिन क्या, हाँ हाँ, मुझे जल्द से जल्द इसकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। मेरे मित्र का पुत्र रत्नाकर एक अच्छा वर सिद्ध हो सकता है रत्नावती के लिए। मैं आज ही अपने मित्र से बात करता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा।
और जानती हो सोना, इस तरह रत्नावती का विवाह संपन्न हुआ रत्नाकर के साथ। और जानती हो सोना, एक दिन क्या हुआ?
क्या हुआ?
एक दिन रत्नावती घर में नितांत अकेली थी कि उनका एक नौकर वहां रत्नावती के कमरे में पहुंच गया। रत्नावती उसे देखकर एकदम घबरा गई।
तुम यहां इस समय क्या करने आए हो? मुझे तुम्हारा उद्देश्य कुछ ठीक नहीं मालूम जान पड़ता।
बहुत दिनों से इस अफसर की तलाश में था, आज
तुम चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ।
आज तो आपको मेरी आज्ञा माननी होगी।
सुनो, जब रत्नावती ने देखा कि उसका नौकर इस तरह नहीं मानने वाला, तो उसने अपना रुख बदल लिया। उसने बड़े प्यार से नौकर को अपनी शैया पर बिठाया
और फिर क्या हुआ?
तुम सुनो तो सही। रत्नावती ने अपने नौकर को दूध का एक गिलास पेश किया। नौकर के तो मानो भाग्य ही खुल गए। उसने गटागट वो दूध पी लिया। पर जानती हूँ मैं ना, उस दूध में जहर मिला हुआ था, इसीलिए दूध पीते ही वो नौकर मर गया। इससे पहले कि रत्नावती नौकर के शव को ठिकाने लगाती, उसका पति रत्नाकर वहां आ पहुंचा। आप इस समय
क्यों? क्या मैं अपने घर दोपहर के समय नहीं आ सकता? तुमने द्वार खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? क्या अधिक व्यस्त थी?
नहीं नहीं जी, मैं थोड़ा सो गई थी।
अच्छा अच्छा अच्छा, अब तुम जरा मेरे लिए भोजन तो परोस दो।
अरे अरे, आप उधर मेरे शयनकक्ष की तरफ कहाँ जा रहे हैं? आप यहीं दीवान पर विराजें, मैं भी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ।
देखा सुना, रत्नावती ने किस चालाकी से अपने पति से अपनी सारी करतूत छिपा ली।
अच्छा, आगे क्या हुआ?
हाँ हाँ, बताता हूँ, मैं ना बताता हूँ। रात को जब रत्नाकर गहरी निद्रा में डूबा हुआ था, तो रत्नावती ने शोर मचाना शुरू कर दिया।
खून 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 खून, अरे हमारे घर में खून हो गया है। अरे कोई है, कोई तो आओ, देखो मेरे पति ने मेरे मायके से आए नौकर का खून कर दिया, उसे जहर देकर मार डाला, देखो ना खून हो गया है।
मैना, रत्नावती का शोर सुनकर सब पड़ोसी इकट्ठे हो गए। उन्होंने रत्नाकर को पकड़कर राजा के सिपाहियों के हवाले कर दिया। रत्नावती ने राजा के सामने जाकर ये बयान दिया।
बात यह है महाराज कि आज जब मेरे पिता के घर से हमारा नौकर मेरा हालचाल पूछने आया, तो महाराज मेरे पति ने शराब के नशे में उसे दूध में विष देकर मार डाला।
मैना, इस पर राजा ने बिना रत्नाकर की कोई बात सुने उसे फांसी की सजा सुना दी। लेकिन जानती हूँ मैना, जब उस चरित्रहीन रत्नावती ने अपने नौकर को जहर देकर मारा, तो उस समय उनके घर में एक चोर भी चोरी करने के इरादे से आया हुआ था। उसने नौकर और रत्नावती के बीच जो जो हुआ था सब कुछ देखा था। जब चोर को ये मालूम हुआ कि राजा ने रत्नाकर को फांसी की आज्ञा दी है, तो उसने सोचा,
ये तो अनर्थ हो गया। राजा द्वारा एक निर्दोष को प्राण दंड मिल रहा है। नहीं नहीं नहीं, उस नौकर का वध तो रत्नावती ने किया है। मैं अवश्य ही सच्चाई से राजा को अवगत कराऊंगा, चाहे मुझे चोरी की चेष्टा के लिए दंड ही क्यों ना भुगतना पड़े।
और मैंने सुना, इस तरह उस चोर ने राजा को जाकर सब कुछ साफ साफ कह दिया। राजा ने सारी बात समझ ली और चोर की गवाही को मान्यता देते हुए रत्नाकर को छोड़कर रत्नावती को फांसी की सजा दे दी। और हाँ, चोर को भी एक घर में चोरी करने जाने के अपराध में कड़ी कारावास का दंड दिया।
ईमानदारी से एक निर्दोष की जान बच गई।
तो राजा विक्रम, सुनी तूने ये कहानी, अब तू मुझे बता कि वास्तविक रूप से दोषी कौन है और कौन अपने सदमार्ग पर चल रहा है। जानते हुए भी अगर तू नहीं बताएगा तो तेरा सर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा।
सुनो बेताल, इस कहानी में तो चोर की ईमानदारी तथा श्रेष्ठता अपने ही आप सिद्ध हो जाती है। यदि वो राजा को समय रहते सत्य से परिचित ना करवाता तो सचमुच एक निर्दोष को फांसी लग जाती। शेष रत्नावती तो दोषी है ही, हम तो उसके पिता को भी दोषी मानते हैं जिन्होंने रत्नावती के बुरे चरित्र को जानते बूझते उसका विवाह अपने ही मित्र के पुत्र रत्नाकर के साथ कर दिया, जिससे कि बाद में रत्नाकर को अपनी पत्नी के झूठ का शिकार भी बनना पड़ा।
वाह राजा विक्रम, वाह, तूने बिल्कुल ठीक कहा, तू सचमुच बड़ा न्यायकारी है। पर मैं क्या करूं, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तू बोलेगा तो मैं भाग जाऊंगा, तू फिर बोला तो ले अब संभाल मैं चला।
आखिर मुझसे तू कब तक भागेगा बेताल, मैं तुझे योगी राज के पास लेकर ही जाऊंगा।
चला जा वापिस, चला जा राजा विक्रम, वापिस चला जा, वो धूर्त योगी तुझे व्यर्थ में फांस कर अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। अभी भी कहता हूँ वापिस चला जा राजा विक्रम।
नहीं बेताल, नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
लेकिन बेताल ने राजा विक्रम की एक नहीं सुनी और उड़ चला उसी पीपल के पेड़ पर उल्टा जा लटकने को। राजा विक्रम भी कहां मानने वाले थे, वो भी चल दिए बेताल के पीछे पीछे योगी को दिया अपना वचन निभाने और पीपल के पेड़ से उल्टे लटक रहे शव को उतार लाने के लिए। रात और भी गहरी हो चली थी। अच्छा तो दोस्तों, अब चलते हैं विक्रम और बेताल की कुछ और खट्टी मीठी कहानियों के साथ। आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।